नितई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री लाडिली लाल की श्री बरसाना धाम की श्री पीली पोखर धाम की बसंत पंचमी महोत्सव की नितई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। आज के इस सुंदर पवित्र त्योहार पर आप सबका पीले पोखर में स्वागत है। हरि बोल। सबसे पहले मैं बिना भूले ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ रहा है ना, आप पूरा पेंटिंग किया हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं, उस तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर पीली पोखर लीला का चित्रपट भी मिलेगा। श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट और कई सारी संस्थाएं, श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट यानी हमारा ट्रस्ट जिसका नेतृत्व इस कार्य में इस ग्रेस गौरांग प्रभु ने किया था और बहुत सारी भक्तों का उसमें सहायता है, इन्होंने सब मिलकर पिछले फरवरी से इस दिसंबर तक इसका पूर्ण जीर्णोद्धार किया है। इसलिए बहुत सुंदर, देखिए वहाँ पर देखिए कितने सुंदर चित्रपट निकाले हैं। इसके लिए वो बंगाली आर्टिस्ट आया था, उसने 3 महीने में ये पूरे सब पेंटिंग किया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और वहाँ पर एग्जैक्टली आप लोगों के पीछे वहाँ पर बहुत बड़ा चित्रपट है जिसमें राधा रानी अपने हाथ धो रही है जल के अंदर। तो पीली पोखर की कथा कहाँ से शुरू करें, यही बड़ा प्रश्न है। लेकिन किंतु आज बसंत पंचमी है इसलिए वहीं से शुरू करेंगे। बसंत पंचमी को ब्रज के 45 दिन होली का आरंभ होता है। ब्रज में 45 दिन की होली होती है तो उसका आरंभ आज से होता है। वास्तविक जब संध्या आरती होती है 4:30 बजे जो उत्थापन आरती होती है उसी से रंग उधेड़ना शुरू हो जाता है और होली का उत्सव आरंभ होता है। सब ठाकुर जी जितने भी हैं, पता नहीं हमारे ठाकुर जी क्यों नहीं, लेकिन सारे ठाकुर जी जो हैं वो पीला वस्त्र पहनते हैं। सभी जगह पर सारे मंदिरों में, यहाँ तक कि फूल भी पीले ही पहनते हैं, अलंकार भी पीले ही पहनते हैं, धोती लहंगा फरिया भी पीला पहनते हैं, उनको भोजन भी पीले ही रंग का दिया जाता है। क्या क्या पीला होता है बताओ? गुजरातियों को ढोकला याद आता है, दाल पीली रंग की, दाल पीला रंग का, केसरी भात, हाँ फिर पीली रंग की खीर जो केसर डाल के बनाई जाती है, और आलू की पीली सब्जी, हल्दी डाल के इडली, उस प्रकार के सारे व्यंजन जो है, मिष्ठान हो या नमकीन हो या तला हुआ हो पकवान हो, सब कुछ पीला रंग का। और पुजारी जी भी पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, यहाँ तक कि कथा करने वाले भी पीला ही पहनते हैं, तो उसको येलो डे नहीं कहते हैं, उसको बसंती वस्त्र कहते हैं। ये सब जो अंग्रेजों के डेज है ना, सब बकवास है, पूरी तरह से बकवास है। उसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है, केवल स्वार्थी फन है। वो जो इस प्रकार का फन वो एंजॉय करते हैं वही फन बन के उनको डसता है बाद में काल के रूप में। आज कौन सा दिन सबको पता है ना अंग्रेजों के अंदर, लेकिन हमारे महाराज जी ने एक लंबा प्रवचन दिया है कि वो कैसे एक दुख भरा दिन है, इसको अंग्रेजों ने एक अलग रूप दे दिया जो झूठ है। हम इतना उसमें उखड़े हुए हैं कि हम उसका नाम भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि वास्तविकता में आज का दिन जो है वो वसंत पंचमी का दिन है। यहाँ पर कोई पहनते नहीं है, अरे आपने पीला पहना है ऐसा नहीं बोलेंगे, अरे आपने बसंती श्रृंगार किया है, बसंती वस्त्र पहने हैं ऐसे बोलते, अरे आपके बसंती वस्त्र बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं। ये हमारी संस्कृति है, बहुत प्रिय और बहुत गहरी संस्कृति है। इस संस्कृति को पालन करके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ऐसे भी शास्त्र में लिखा है कि आज के दिन से बसंती बसंत ऋतु का आरंभ होता है, इसलिए उसको बसंत पंचमी कहते हैं। इस समय आप जहाँ पर जाएंगे ब्रज में या उत्तर भारत में कहीं भी जाएंगे तो सब जगह सरसों के खेत में पीले फूल आएंगे और दूर दूर तक मील मील तक आपको पीली चादर दिखाई पड़ेगी, बहुत सुंदर। तो जहाँ पर भी खेत उपलब्ध हैं वहाँ पर वो पीले फूल जो है उसको निकाल कर ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है, उसकी माला बनाई जाती है, फ्लावर पॉट में रखते हैं, चरणों में, हाथ में, पीछे आगे गुच्छा बना के रखते हैं। तो सरसों के पीले फूलों का बहुत महत्व है इसमें। और बसंत तो एक ऋतु है छः ऋतुओं में से, तो ये छः ऋतु जो हैं ये सदैव कृष्ण भगवान और राधा रानी की लीलाओं में सहभाग देने के लिए तत्पर रहते हैं। और कहते हैं वसंत ऋतु ब्रज में सदैव उपस्थित रहता है। और भी एक अद्भुत स्थिति है कि वर्षा ऋतु का अर्थ है कि वर्षा हो रही है, और वैशाख जो ऋतु होता है ना ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी होती है, और हेमंत शिशिर ऋतु में बहुत ठंडी होती है। लेकिन ये छः ऋतु जो है हर दो महीने में एक बार बदलते हैं, वो सारे छः ऋतु जो हैं वो सदैव एक साथ श्री कृष्ण भगवान को आनंद देने के लिए एक साथ विराजते हैं। कैसे विराजते मुझे नहीं पता है, क्योंकि तो ठंड के मौसम में ग्रीष्म ऋतु कैसे आ सकता है, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में वर्षा कैसे आ सकती है। लेकिन जब भगवान की जो इच्छा होगी वो ऋतु प्रकट होगा, क्योंकि वही खड़े रहते हो दरवाजे के बाहर, है ना, एक तरह से बुलाएंगे तो वही हाजिर हो जाते हैं। जैसे हाजिर होते हैं उनका सारा परिणाम वातावरण में प्रकट हो जाता है। ऐसा है सुंदर वसंती उत्सव है। वसंती उत्सव में जिसको फाग उत्सव भी कहते हैं, क्यों फाग कहते हैं, फागुन का महीना इसलिए इसको फाग उत्सव भी कहते हैं। और फाग उत्सव का एक शब्द में व्याख्या की जाए आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद ही आनंद, यही उसकी एक व्याख्या है। मैंने यहाँ पर कई साल अनुभव किया है कि जब ये उत्सव शुरू होता है तो सब लोग एकदम आनंद में रहते हैं, गरीब से गरीब, धनी से धनी, केवल आनंद लुटाते हैं। और इस आनंद को व्यक्त करने के लिए रंगों को उधेड़ते हैं सब लोगों के ऊपर, अपने हृदय में जो प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए रंगों का उपयोग करते हैं, रंगों के माध्यम से प्रेम प्रकट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ लव थ्रू द मीडियम ऑफ कलर्स। ये बहुत ही उच्च कोटि का उत्सव है, उच्च कोटि का प्रेम उत्सव है। बट हमने बचपन से, क्योंकि हम शहरवासी हैं ना, तो हमारे बचपन से इस उत्सव का एक विभत्स स्वरूप हमने देखा है, बहुत घिलौना, जिसको हम समझते हैं कि यही है, वो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब ब्रज में आए तब हमको समझ में आया कि ये तो विकृति है, यहाँ पर प्रकृति है, यहाँ पर प्रकृति का दर्शन होता है, उसी की विकृति शहर में दिखती है। वो जोर ज़बरदस्ती कन्याओं के सुंदर बालों पर ऑयल पेंट डालना, कीचड़ का बॉल फेंकना, और बहुत प्रकार के केमिकल का रंग भरा हुआ फेंकना किसी के मुंह में, किसी की गाड़ी में कांच फोड़ देना, क्या क्या भयंकर द्वेषपूर्ण कार्य करते हैं। इस होली को मनाने के भाव से, मतलब उद्देश्य से, कारण से बहुत दूसरों को कष्ट हो, पीड़ा हो, नुकसान हो, इस प्रकार का कार्य करते हैं। लेकिन जब मैंने गोस्वामियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ब्रज में एक सुंदर प्रकार की पौधा होता है या औषधि होती है, वो इस समय आती है। जैसे कि कुछ कुछ पौधे ना एक विशिष्ट समय पर आते हैं, तो वो पौधा इस समय पर उसका वो प्रचुर मात्रा में मार्केट में मिलता है। अब किसी भी पनवारी के पास जाओ आपको मिल जाएगा। तो वो जो है उसके पत्ते निकालते हैं और पानी उबाल कर उसमें डाल देते हैं, अब बंद कर देते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं सिमरिंग, उसको गर्म करके बंद करते फिर पत्ते डाल देते हैं। वो पत्ते गर्म पानी में डालते ही वो रंग छोड़ना शुरू कर देता है, और वो जो रंग छोड़ने के बाद से पत्ते निकाल लेते हैं और वो ऊन पानी जो है रंगीत रंग रंग बिरंगी पानी जो है ऊन, वो ऊन पानी पिचकारियों में भरकर लोगों पे चलाते हैं। आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन वो जब जल गुनगुना यानी वॉर्म लुक वॉर्म वो जब आपके त्वचा पर आता है तो बहुत ही आह्लाद का अनुभव होता है। त्वचा जो है ना खिल जाती एकदम। अभी त्वचा खिल जाना क्या है, आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ आपको शरीर पे वो रंग आएगा वो त्वचा एकदम खिल जाएगी। और अभी का कोई रंग आएगा तो एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, कान में नाक में डालेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक है प्रकृति सत्य स्वरूप और दूसरा है विकृति जो हम आम दिन में सरेआम देखते हैं। तो ब्रज में आकर यही हमको देखना है कि कौन सी चीज़ें हम गलत होते हुए सही मान रहे हैं और सही चीज़ क्या है वो सीखने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो अति उच्च अति उत्कट प्रेम को व्यक्त करने के लिए ये होली का उपयोग होता है। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति में ये भी है कि अगर किसी के मन में गिला शिकवा हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, किसी प्रकार से मन मुटाव हो गया हो तो होली का उत्सव का प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि तो होली के उत्सव में सब गिले शिकवे मिटाए जाते हैं और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। याद आ रहा है ना फिल्मी गाना, हाँ सबको आया था, हंस रहे गाल में ऐसे। अच्छा, सब गिले शिकवे मिट जाते हैं। ऐसा है हमारे उत्सव है। हमारे मुंबई की तरफ जो उत्सव होता है उसमें जिसके मन में दुश्मनी है वो बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, शराब बरा पीते हैं, फिर गोलाबारी करते हैं, मारामारी करते हैं। तो ये हमारे संस्कृति का नाश है। इसलिए प्रामाणिक भक्तों को ब्रज में आकर एक एक उत्सवों का बहुत ही गहरे से अवलोकन करना चाहिए कि हमारी क्या संस्कृति है। अगर हम सनातन धर्मी हैं और हमारे धर्म पर हम विश्वास करते हैं और हमारे धर्म के उत्सवों पर विश्वास करते हैं तो हम लोग उस उत्सव की धरोहर या जो बुनियाद या गहरा जो सार है उसका, वो अगर नहीं बनाएंगे या नहीं प्रकट करेंगे, नहीं अपने आप में उसको प्रज्वलित करेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा और हमारे बच्चों को बसंती क्या है पता नहीं चलेगा। इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग ये समझने का प्रयास करो और अपने आगे वाली पीढ़ियों को समझा दो, फिर उनको बता दो कि आपको अपने आगे वाली पीढ़ी में बताना है। क्योंकि उत्सव भारतीय वैदिक संस्कृति का एक प्रमुख आधार है। उत्सव से उत यानी उन्नति होती है, ऊर्ध्व दिशा में प्रगति होती है। उत्सव से सब लोग आनंदित हो जाते हैं, सबका प्रेम बढ़ता है। भारत उत्सव प्रिय देश है। भारत में वैसे कभी मानसिक बीमारियां नहीं होती थी, अभी बढ़ रही है क्योंकि गांवों का शहरीकरण किया जा रहा है, उत्सव नष्ट होते जा रहे हैं या उत्सव कर रहे हैं तो बीभत्स रूप में प्रकट कर रहे हैं गलत तरीके से। इसलिए क्या हो रहा है कि भारत में भी मानसिक बीमारी आ गई है। भारत तो पूरा उत्सव का भरा देश है, उसमें एक उत्सव समाप्त होते दूसरा उत्सव शुरू हो जाता है या तो तैयारियां शुरू होती है आने वाले नए उत्सव की। बीच में समय कहाँ है डिप्रेस होने के लिए, समय नहीं है। दशहरा बनाते बनाते बहुत दिन लगते हैं, वो रावण की मूर्ति बनाने के लिए फिर जलाना है, फिर थोड़ा थक जाएंगे फिर सो जाना है, तुरंत दिवाली की तैयारी, फिर मिठाइयाँ बनानी है, फिर घर साफ करना है, फिर क्या क्या खरीदी करना है। सो इसी प्रकार से हम सब लोगों को देखना यह है कि अगर आपको मानसिक बीमारियों से दूर रहना है तो उत्सव मनाइए। हम सब लोगों को बताते हैं अपने घर पर भी मनाइए, हर उत्सव घर पे भी छोटे स्तर पर क्यों ना होना चाहिए। और बालकों को पूछना चाहिए कि माता जी ये क्या है, दादी जी ये क्या है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान पूछ रहे ना, बाबा कौन सा उत्सव मनाए जा रहे हो, थोड़े इंद्र का पूजन है रोए क्यों कर रहे हैं। तो नंद बाबा सब समझाते हैं उनको, बालक जिज्ञासा कर रहा है और पिताजी समझा रहे हैं कि उत्सव क्यों मनाते हैं, ये उत्सव इसका प्रयोजन क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान ये गिरिराज लीला के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि कैसे बालक प्रश्न करते हैं और कैसे माता पिताओं को उत्तर देना है। लेकिन नंद बाबा को पता था इसलिए पूरा समझाया। आजकल के माता पिताओं को पता नहीं है, कुछ भी ठोक देते हैं, लेकिन वो पता नहीं उनको कि ऐसे झूठ मूठ की जानकारी देने से बच्चों का संस्कार कैसे बिगड़ता है। एक गलत इन्फॉर्मेशन एक कोमल हृदय में आप भर देते हो। इसलिए प्रयत्नपूर्वक स्वयं अपने अपने उत्सवों का अर्थ पढ़िए, ढूंढ लीजिए और प्रयत्नपूर्वक अपने बालकों को वो उत्सव मनाने के लिए प्रवृत्त कीजिए, उनका सहभाग लीजिए। जैसे हम लोग, मैं दक्षिण भारतीय हूँ तो हमारे घर में जब भी कोई उत्सव होता है तो केले के पत्ते पर भोजन करते हैं और हमारी साउथ इंडियन जो लुंगी है वो पहनते हैं, ऊपर से कुर्ता पहनते हैं वगैरह। तो जब वो केले के पत्ते घर आते हैं तो बच्चों को समझता है कि आज उत्सव है, फेस्टिवल है कोई। हर एक उत्सव के अलग अलग भोजन होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। राधाअष्टमी को कर्पूर डाली डालकर बनाई हुई खीर बनाई जाती है। होली जब आती है तो होली में पूरण पूड़ी बनाते हैं, है कि नहीं। मकर संक्रांति में तिल के क्या कहते हैं उसको, वो होता है ना, क्या नाम, गजक, गजक गजक बनाते हैं। तो गजक आ गया मतलब अभी मकर संक्रांति आने वाली है। ये हमारी संस्कृति है, खाने के पदार्थ में संस्कृति है, पहनने में संस्कृति है। अलग अलग प्रकार के उत्सव अलग अलग समय पर आते रहते हैं। तो होली के कुछ नियम बताता हूँ मैं आपको। बड़ों को होली ऐसे रंग जो है वो हाथ में और पैर में लगाकर दंडवत करना है, और बड़ों को छोटों के लिए क्या करना है, प्रेम से उनको आशीर्वाद देना है और रंग लगाना है बड़े प्रेम से। और जो एक समवयस्क है हाँ, उनको ही गाल में ऐसा मल के हंसना वगैरह सब उनके खाली दोस्तों के लिए है। और एक बात और याद रखना, होली किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं खेलते कभी भी। जिनके साथ प्रेम है उनके साथ होली खेली जाती है, प्रेम को बढ़ाने के लिए। न जान न पहचान और कोई भी आके रंग लगा रहा है, ये संस्कृति शहरी है, ये गांव की संस्कृति नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपके गालों को हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन उद्दंड संस्कृति होती है तब ये सब होने लगता है। फिर आतंक भी होता है, फिर गुनेह भी होते हैं, विकृति आ जाती है सब। तो ध्यान रखना इस बात का। हम जाके गुरुजी को जाके ऐसे गाल में तेल रंग नहीं लगाते, अगर लगाने का अवसर भी आता है तो उनके हाथ पे लगाते हैं ऐसे, या उनके पैर पे लगाते हैं और प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनकी इच्छा हुई तो वो ऐसे लगा सकते हैं। बहुत सोबर और बहुत मृदु और मुलायम और गहरा उत्सव है ये, मस्ती करने का उत्सव नहीं है। आनंद बहुत है उसके अंदर, लेकिन मित्रों के और प्रेमियों के बीच होने वाला उत्सव है ये। अभी हम देखते हैं ना राधा श्याम सुंदर जी, गोपियाँ, ग्वाल बाल कैसे होली खेलते हैं। मैं अभी एक वर्णन पढ़ रहा था, एक रणवारी गांव है, कहते हैं कि होली के उत्सव के मद में ग्वाल बाल एकदम मदमस्त मदहोश हो गए थे। ऐसा वर्णन है कि वो होली के खेल से ही, कोई नशा नहीं कर रहे, होली खेल खेल के ऐसा क्या कहते हैं, झिंग झिंग यानी ऐसा झूल रहे हैं, बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड। और मधुमंगल चल रहा है, खमज बना रहे कहाँ चल रहा है, सुबल कहाँ चल रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है उनको। कोई आके सवार रहे उनको, अरे इतना नशा में हो गया है ऐसा लगता है, आनंद है वो पूरा। और छुप छुप के सामने से गोपियों पर, क्योंकि उनका आपस में इतना प्रेम है। तभी भी बहुत सारा कहने के लिए समय बहुत कम है, संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि जो होली होली करते हैं ना, होली हम बोलते हैं जिसको होली, वो होली का उत्सव इस जगह पे आरंभ हुआ था। होली नाम का जो उद्गम है वो भी बरसाने से हुआ है, राधा रानी के धाम से। तो अभी संक्षेप में कहानी बताता हूँ। ये जो महीना है ना, अभी आज कौन सा महीना चल रहा है, फाल्गुन शुरू हो गया, आज पंचमी है, तो अभी कुछ दिन के बाद में नहीं, आज माघ महीना है, सॉरी, माघ महीने की शुद्ध पक्ष की पंचमी है, उसके बाद में फाल्गुन महीना आएगा। तो फाल्गुन महीने के शुद्ध पक्ष के नवमी को यहाँ पर लट्ठामार होली होती है, विश्व प्रसिद्ध लट्ठामार होली। वो भी कोई मस्ती का खेल नहीं है, लट्ठा मारते हैं, लेकिन इतना प्रेम से मारते हैं, आप देखोगे ना हैरान हो जाओगे आप, इतना प्रेम उसमें प्रकट होता है। और उसमें भाग लेने के लिए 5 साल से लड़की के लेकर ले से बुढ़िया भी उसमें भाग लेती है, कूद कूद कर ग्वाल बालों को पीटती है। उसको रंगीली होली कहते हैं। तो रंगीली होली फाल्गुन शुद्ध नवमी को होती है, और फाल्गुन शुद्ध अष्टमी के दिन यानी एक दिन पहले वो जो नंदगांव के लोग हैं वो राधा रानी को और बरसाना वासियों को, कोई देख रहा है क्या? तो मैं क्या बता रहा था बताइए, फाल्गुन शुद्ध अष्टमी के दिन नंदगांव से ब्राह्मण कृष्ण भगवान की ओर से श्याम सुंदर जी की ओर से आमंत्रण लेकर आता है बरसाने में, तो वो यहाँ पर आता है, उसको कहता है, उसका नाम है पांडे, ब्राह्मण है वो, तो इस लीला का नाम है पांडे लीला, पांडे लीला, यहाँ की भाषा में पांडे लीला बोलते हैं उसको, लेकिन पांडे लीला है वो। तो यहाँ पर वो अकेला बेचारा निमंत्रण लेके आता है श्याम सुंदर की ओर से राधा रानी के लिए, तो सब सखियाँ उनको पीली पोखर के किनारे पे घेर लेते हैं और चारों तरफ से पिचकारी से रंग मार मार कर उसको पूरा धो देते हैं कम्प्लीटली। और वो बेचारा अकेला सारी जवान नटखट शरारती कन्याओं के सामने एकदम हार जाता है बेचारा वो। उसमें राधा रानी नहीं रहती उस समय, लेकिन थोड़ी देर से आती है तो क्या देखती है, बेचारा पांडे इतना प्रेम से निमंत्रण लेके आया है, मेरी सारी नटखट शरारती गोपियाँ फ्रेंड्स को परेशान कर रही है, तो सबके बीच में जाकर पांडे को मुक्त करती है और क्षमा मांगती है उसकी कि मेरे सहेलियों का अपराध मत लेना, ये ऐसी शरारती है, बहुत नटखट है, इसको क्षमा कर देना। फिर वो देखती है कि वो पूरा रंग से भीगा हुआ है, तो उसको अपने घर ले जाती है और घर जाकर सुगंधित ऊन जल की व्यवस्था करती है स्नान करने के लिए। भीगे हुए कपड़े उतारने के पश्चात राजशाही राजा मतलब उसके पिताजी राजा है ना, वैसे कपड़े निकाल कर रखती है। फिर पांडे जी बढ़िया स्नान करते हैं गर्म पानी से, जो परेशान है ना, अभी ठंड लग रही है और, तो गर्म पानी सुगंधित जल से स्नान करते हैं, फिर राजशाही वस्त्र पहनाते हैं उसको, दे पहनता है वो, सिंहासन पर बिठाते हैं कि आरती पूजा चरण प्रक्षालन यानी चरणों का अभिषेक करके उसको मिष्टान बहुत सुंदर सुंदर भोजन खिलाते हैं। राधा रानी एक प्रकार से ब्राह्मणों का शास्त्रोचित सत्कार भी कर रही है और जो उनकी सहेलियों ने अपराध किया उसकी क्षमा भी ले रही है। उतने में कीर्ति मैया को पता चलता है कि कोई पांडे ब्राह्मण नंदगांव से आया है निमंत्रण लेकर, तो इतनी खुश हो जाती है वो, अंदर से रसोई से लड्डू लेके आती है और ब्राह्मण को देखती है और सीधे उसके मुंह में भर देती है, 1 2 3 4, तो इसको कहते हैं लड्डू होली। पहले हुई पाणी लीला, उसके बाद में लड्डू होली। आज भी इस लड्डू होली के उपलक्ष में श्री जी मंदिर के अंदर से एक तरह से राजा रानी के घर से लड्डू फेंकते हैं और आज भी वो ब्राह्मण के निमंत्रण के रूप में नंदगांव के हुरी आरे सज धज कर, नंदगांव के बालक जो है सज धज कर ढाल लेकर अलंकार पहनकर पिचकारियाँ रंग लेकर रंग का निमंत्रण लेकर श्री जी मंदिर पहुँचते हैं। और फिर जैसे वो पहुँचते हैं ना वो अलग दिखते हैं, कभी आओगे तो बहुत रंग बिरंगी वस्त्र पहनते हैं, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी, जैसे समझा आपके बीच में कोई सैनिक आ गया तुरंत पहचानोगे ना, ऐसा पूरा लदा हुआ है बॉम्ब गोलियाँ ये बंदूक चाकू सब, तो आप समझेंगे कि ये सैनिक है। उस प्रकार से वो होली के सैनिक हैं हुरिया रे, जब वो आते हैं तो उन तुरंत देखते हैं कि अरे आ गए सब लोग, आ गए आ गए, तो तुरंत श्री जी के गर्भगृह से अनंत लड्डुओं का वर्षा होता है और वो जो हुरियारे आए हैं उसको पकड़ते हैं, वो प्रसाद बांधते हैं अपने आप को जेब में डालते रहते हैं, पकड़ते चला कूदते हैं मारामारी करते हैं वो लड्डू पकड़ने के लिए। लड्डू उस दिन का वहाँ प्रसाद श्री जी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो उस दिन अष्टमी के दिन मंदिर में बहुत सारे लड्डू दान कर देते हैं और वो सारे लड्डू जो है वो फेंकते हैं अंदर से पुरोहित लोग, और इस प्रकार से ये निमंत्रण लीला समाप्त हो जाती है। अगले दिन वही सारे ग्वार बाल सज धज कर हुरियारे बनकर दोबारा आते हैं, 4 बजे के आसपास आते हैं, श्री जी मंदिर जाते हैं और वहाँ पर राधा रानी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं आइए सखी जी लीला करने के लिए, तो सब सखियाँ उतर आती हैं। और यहाँ पर एक गली है, इसका नाम है रंगीली गली, तो रंगीली गली में ही वो होली खेली जाती है। एक तरह से नंदगांव के हरियारे आते हैं और जो वो आ रहे हैं तो उन पर छतों से बिल्डिंग से पहले मंजिल से रंगों का वर्षा होता है और प्रेम की गालियां बकते हैं, वो मैंने आपको बता सकता क्या बोलते हैं लेकिन बहुत प्रेम से बोलते हैं, वो सुनने वाले को क्रोध नहीं आता है, बताने वाले को भी बुरा लगता नहीं है, बड़े प्रेम से उनको टोकते हैं और रंगों का वर्षाव करते हैं, सूखा रंग, गीला रंग, सब कुछ। और फिर क्या होता है, फिर वो पहुंच जाते हैं आमने सामने, और जो माताएं जो हैं, जो जो युवा अवस्था की माताएं हैं, वो लट्ठा लेके आते हैं और नया जोड़ा पहन के आते हैं। यहाँ पर ब्रज में, बरसाने में, होली में कोई भी पुराना ड्रेस नहीं पहनता है। होली के दिन, रंगीली होली के दिन, गरीब से गरीब आदमी भी चराने का क्यों ना हो, नया शर्ट पहन के आएगा या नया दो कुर्ता पहन के आएगा, यहाँ का रिवाज है। क्योंकि होली के दिन अगर कोई पुराना वस्त्र पहनता है, मतलब वो दरिद्री है, इसलिए कोई भी उस दिन पुराने वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो वो भी नया जोड़ा मैं देखा हूँ, 40,000-50,000 की साड़ी पहन के आते हैं स्त्रियाएँ, पूरा पल्लू ओढ़ के, पूरे अलंकार पहन के, और 15 दिन जो इसको तेल में रगड़ा हुआ है ऐसा बाम्बू लेके आते हैं लठ, और फिर आते ही बरसते हैं सब ग्वाल वालों के ऊपर। उनके पास एक गद्दी होती है ऐसे हैंडल वाली, ठक 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 उसको लेते लेते हैं ऐसे, उस पर एक दो बार एक 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 साथ में तीन तीन चार चार गोपियाँ जो है वो लट्ठा प्रहार करती हैं और उसको बचाते रहते हैं ऐसे ऐसे। और उस दिन गवर्नमेंट की तरफ से रंगीली गली में कई ट्रक रेती रज जो है उतार देते हैं, और जब ये 4 बजे उससे शुरू होता है, अराउंड 5:30-6 बजे समाप्त होता है, वो पूरे रास्ते पर एक कण भी आपको रज नहीं मिलेगा, उल्टे गड्ढा खोद खोद के वो भी रज लेके जाते हैं। जिस जगह पर ये लट्ठामार होली का सुंदर उत्सव संपन्न हुआ है उसकी रज लोग घर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में, रंगीली होली। और रंगीली होली में लट्ठामार होने के बाद में जो लट्ठा खा रहे हैं, वो लट्ठा मार के हो गया तो जाकर वो गोपियों के चरण छूते हैं और उनको फगवा देते हैं। देखो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द आपको बताए, कितना अटेंशन है मुझे पता नहीं है। तो फगवा देते हैं, फगवा, फगवा का अर्थ क्या है, जो होली का खेल में हार जाते हैं उनको गिफ्ट देना होता है गोपियों को। तो उसमें वस्त्र होते हैं, अलंकार होते हैं, पैसे होते हैं और कोई उपयोगी वस्तु होती है, वो सब लेके साथ में आते हैं। जैसे मार खाते हैं पहले, फिर उनको गिफ्ट देते हैं और उनके चरण छुकर उनका आशीर्वाद देते हैं और गोपियाँ उनको आशीर्वाद देती हैं, प्रेम का आशीर्वाद। तो फिर नवमी के दिन यहाँ पर जब गोपियाँ आती हैं, ग्वाल बाल भी आते हैं, तो पहले सब मिलते हैं, बहुत प्रेम का मिलन होता है। फिर सभी सखियाँ और सखा मिलकर ये तय करते हैं कि हम लोग भी होली शुरू करेंगे, विल स्टार्ट द होली। तो नियम बनाते हैं, तो भी कहते पहले कहते हैं कि हम सूखी होली खेलेंगे, फिर जब मन लगेगा तो गीली होली खेलेंगे। गीली का मतलब क्या होता है, पिचकारी से, और सूखी का मतलब रंग लेकर उसको लगाना, गाल में लगाना वगैरह। तो रंगीली होली की सूखी होली शुरू होती है और वो इतने कम समय में इतना उसमें क्या कहते हैं उसको, बहुत गहरी हो जाती है, इंटेंस हो जाती है, तीव्र हो जाती है। और उस गहरे होते हुए होली में कृष्ण का पक्ष ग्वाल बालों के साथ में हारने लगता है और गोपियाँ उन पर हावी होना शुरू हो जाता है कुछ ही क्षणों में। तो जब श्यामसुंदर देखते हैं कि ग्वाल बाल और हम लोग हार रहे हैं, तो श्याम सुंदर गुस्सा की करते हैं, चालाकी करते हैं, चुपके से पिचकारी निकालते हैं और राजा रानी को मारते हैं। अभी रंग में भंग हो गया ना, अभी आपका नियम था कि जब सूखी खेलना है तो सूखी खेलना है, उसमें बीच में गीली नहीं खेलना है। तो इनकी चालाकी देखकर जो है वो नाराज हो जाते हैं गोपियाँ, राजा रानी तुरंत खेल बंद कर देते, बस करो बंद करो, क्या हो गया। तो श्याम सुंदर ने बहुत चालाकी की है, हमारा नियम था कि हम सूखी होली खेलेंगे, फिर जब समाप्त होगा तो हम तय करेंगे अभी गीली होली खेलना है। लेकिन श्याम सुंदर ने बीच में पिचकारी मारकर ये प्रयास किया है कि राधा रानी को अभी हम क्या कहते हैं उसको, नामोहरम मुझे डिफीट कर देंगे। तो क्या करते श्याम सुंदर जी, गालों पर निशाना बनाकर पिचकारी मारते हैं, लेकिन राधा रानी भी इतनी तत्पर है कि तुरंत हाथ से उसको रोक देती है, ऐसे यहाँ से आ रही है और ये आने वाली है ऐसे रोक देती है। लेकिन वो पिचकारी इतनी फास्ट है कि वो हाथ में लगकर उड़कर ऐसे गाल में आ जाती है कुछ बिंदु उसमें से, और वो गोरे गोरे गालों में वो गुलाबी गुलाबी जल बिंदु जब पड़ते हैं तो राधा रानी इतनी सुंदर दिखती है कि कृष्ण पिचकारी मारने वाले से देखते रह जाते हैं। क्योंकि वो सौंदर्य देखना चाहते हैं कि वो सुंदर सुंदर गुलाबी बिंदु जो है राधा रानी के सुंदर कपोलों पर जब विराजमान है तो इतना सौंदर्य बढ़ता है उनका। तो पहले तो शरारत कर रहे हैं, लेकिन लेकिन वो क्रोध में उसका रूपांतर हो जाता है। फिर जब जैसे ही वो दिग्मूढ़ हो जाते हैं, देखते रहते हैं, तो क्या होता है, तुरंत सखियां आकर उनको पीछे से हाथ मरोड़ कर अरेस्ट कर लेते हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताने के लिए मेरे 5-10 वाक्य लगे, लेकिन एक शुभ एक क्षण में हो जाता है। कब पिचकारी मारी, कब रुकवाई, कब गाल पे आई, कभी आ हो गया, कभी पकड़ा, कभी हाथ मरोड़ के अरेस्ट कर लिया, अभी रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण को जब अरेस्ट करते हैं तो जब भी कोई समस्या होती है तो वो मुकदमा जाता है ललिता के पास, क्या किया जाए इस गुनहगार का, इसने होली का नियम का उल्लंघन किया है। तो ललिता सब निर्णय लेती है और कहती है इसको 3 सजा दी जाए। पूछूंगा मैं कितने लोग सुन रहे हैं, ये कितने लोग म्यूजिक सुन रहे हैं। एक सजा ये है कि उसके मुंह पे काला पोता जाए, हाँ उसके मुंह पे काला पोता जाए। और दूसरी सजा ये है कि ये जो मैंने पहना है ना, ये बहुत क्या कहते हैं उसको, मान का लक्षण है। जिसको भी पहनाते हैं उसका सम्मान कर रहे हैं, और हम स्वयं भी पहने रहे तो हमारे भी सम्मान का प्रतीक है वो। और जब मैं आपका आके खींचता हूँ यानी मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आपको याद होगा ना महाभारत युद्ध में वो उत्तरा अपने भाई से कहती है, हे उत्तर भैया, जब तुम कौरवों के सेनापतियों को परास्त करोगे तो उनके दुपट्टे छीन के लाना, मैं अपनी गुड़िया को पहनाऊंगी। अर्थात क्या है, छीनना यानी अपमान, तो इसका दुपट्टा छीनेंगे उत्तरीय वस्त्र, और इसके पीछे एक गाली लिखकर पीठ पर छोड़ देंगे उसको, चले जाओ यहाँ से, आगे हम खेलेंगे नहीं आपके साथ। वो गाली भी क्या है हम आपको बता नहीं सकते। तो फिर कृष्ण को वो भी जो निर्णय लिया है गुना का वो अमल भी करना है ना, तो ललिता ने निर्णय ले लिया। फिर सखियाँ और कस के मरोड़ के उसको लेके आती हैं, और काजल काला कौन पोतेगा, काजल राधा रानी स्वयं अपने हाथों से पोछेगी। तो एक थाली लेके आते हैं काजल भरी हुई, बोले राधा रानी दुआओ अपने हाथ। अन्य समय हम काजल कैसे लगाते हैं, ऐसा निकालते हैं और बड़े ही कोमलता से लगाते हैं, लकीर आखिरी श्रृंगार है वो, लास्ट फुल स्टॉप है वो, हो गया तो श्रृंगार पूरा हो गया। इस बार क्या करना है, पूरे 10 उंगली पंजा डुबा के पूरा ऐसा पोतना है उसको। तो वो पोतने के लिए उसको हाथ पीछ मरोड़ के लेके आते हैं राधा रानी के सामने, और राधा रानी को ऐसा करके राधा रानी पोछने वाली है तो कृष्ण क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। फिर दो सखियां आती है और उसका गर्दन पकड़ती है टाइट, ऐसा हिलना नहीं चाहिए। फिर उसको काला पोतते हैं, दूसरी सखी एकदम उद्दंडता से उसका उत्तरीय खींच लेती है, भाग जाती है। और तीसरी सखी अभी पीछे जो जगह है कुर्ते पर उस पर वो गाली लिखती है, और जाओ अभी। इसका मतलब क्या, जहाँ जहाँ जाएगा पीछे वो लोग गाली पड़ेंगे। वो दीवार पे था ना पिक्चर था ना, मेरा बाप चोर है, कहीं जाएगा तो देखेगा मेरा बाप चोर है। वैसे किधर भी जाएगा तो ये होली का गुनहगार है। सब जगह पे इस तरह से ये उत्सव यहाँ पर संपन्न होता है। तो ये घटना भी यही हुई है जो मैंने अभी बताई आपको, होली सबसे पहले होली पहला न्योता इधर हुआ है, इधर होली का उत्सव हुआ है। बाकी कई सारी कहानियां यहाँ पर संक्षेप में, नारद मुनि यहाँ पर आए थे, नारद मुनि ने राधा रानी के जन्म के समय दर्शन करने के लिए आए थे वो, और उसके बाद में उनको कुतूहल था कि अभी वो बरसाने चली गई है, 3-4 साल की हो गई है, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो राधा रानी यहाँ पर अपने सखियों के साथ खेल रही है और साथ में मेवा भी खा रही है। हमारे बच्चे खेलते हुए क्या खाते हैं, वेफर चीज बॉल्स, ऐसे नाटक में भी काम करा ना बालक कोई, तो हाथ में चीज बॉल का एक पैकेट होता है और नाटक के बीच में भी चीज बॉल खाते रहते हैं, और यहाँ पर मेवा खाते हैं बच्चे। तो राधा रानी और सखियाँ हाथ में मेवा था, मेवा का मतलब क्या है, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, इस प्रकार के चीज़ों को मेवा कहते हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो राधा रानी भी मेवा खा रही है, सबको खिला रही है, वो खेल रहे हैं सब लोग। उतने में नारद मुनि आते हैं, तो नारद मुनि बहुत वैसे स्वीट है, लेकिन लेकिन बच्चों के लिए तो जटा वटा, गेहुआ वस्त्र और तपस्वी चेहरा बहुत अजीब लगता है ना बच्चों को, ऐसे कोई जीव उनको हमेशा देखते नहीं है। तो उसको उनको देखते ही राधा रानी ना, बालिका राधा रानी भाग जाती है, और मैया भी सामने खड़ी है, छोटी है ना बालिका, अभी अकेले खेलने लायक नहीं है, छोटी सी कन्या है, तो तुरंत माँ की ओर भाग जाती है। माँ को, माँ तुरंत उसको उठा कर गोद में लेती है और मुँह छुपा लेती है, मुँह में, गोद में, और देख नहीं रही है अभी, उसे छुप छुप के देख रही है नारद मुनि को। मैया कह रही है, अरे लाली, यही तो वो बाबा है जो तुम्हारे जन्म के समय पर आए थे, तुमको गंडा बांध के चले गए थे, बड़े कृपालु है। अभी बता नहीं पा रही है बालिका को, कैसे बताएगी, लेकिन क्या उसके मन में भाव है कीर्ति मैया के, कि ये आए इसलिए तुम्हारी आंखें खुल गई, ये आए इसलिए तुमने किल्लोल करना शुरू किया, ये आए तब तुम सुनना शुरू किया। उनको पता नहीं राधा रानी का भाव क्या था उसके पीछे, लेकिन उनको यही पता है कि नारद मुनि आए इसलिए हमारी गूंगी कन्या जो है बोलने लगी, हमारी अंधी कन्या देखने लगी, हमारी बहरी कन्या भी सुनने लगी। तो वो बताना चाह रही है लेकिन वो बता नहीं पा रही, लेकिन वो भाव व्यक्त कर रही है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़े कृपालु बाबा हैं, बड़े दयालु हैं। फिर भी वो चुप चुप के देखती है। नारद मुनि ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके, क्या कहते हैं ना, विस्मय चकित सौंदर्य को देखकर भाव विभोर होकर उनके पास पास आ रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर राधा रानी और डरती है। तो मैया कहे, डरो मत, उनको मेवा दो। तो तुरंत राधा रानी अपने हाथ से ऐसे मेवा दे देती है, ऐसे मुंह माँ की गोद में, माँ की वक्षस्थल में वो दे देती है। नारद मुनि वो मेवा खाते हैं और आनंद विभोर होकर नाचने लगते हैं, उनकी आंखों से प्रेम की आशीर्वाद है। ये लीला यहाँ पर हुई है प्रियेश्वर महादेव के पास। फिर एक दिन शंकर जी महाराज दर्शन करने आए राधा रानी के, क्योंकि राधा जी राधा रानी के भी बाल रूप के दर्शन गोलोक में नहीं होते हैं, तो सारे संत ऋषि नारद मुनि जैसे देवता सब लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर नारद भगवान शंकर जी आए और राधा रानी वहाँ पर रेंग रही थी, यानी शी वॉज क्रॉलिंग ओवर हियर। तो शंकर जी ने प्रणाम किया उनको, तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, बालिका राधा रानी। और उन्होंने कहा कि आप नहीं निवास करो, इसी कुंड में मेरे आप निवास करो। तो ये बन गए प्रियेश्वर महादेव, प्रिया यानी राधा रानी, तो प्रियेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर बस गए राधा रानी की कृपा से। इस प्रकार से कई कई प्रकार से ये कुंड जो है बहुत दिव्य कुंड है। और जो लंबी कथा है मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि राधा रानी रोज जाया करती थी नंदगांव कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए, क्योंकि दुर्वासा मुनि का उनको वरदान प्राप्त हुआ था। बाय द वे इस कुंड का नाम प्रिया कुंड भी है, प्रिया यानी प्रिया का कुंड, लेकिन ये कुंड विश्वानु महाराज का है और ये राधा रानी का स्नान करने का प्रिय स्थल है, इसलिए उसका नाम प्रिया कुंड भी है। लेकिन एक समय इसका नाम पीली पोखर हो गया, पोखर का मतलब जलाशय, हाँ तालाब कह सकते हैं आप, सरोवर कह सकते हैं, उसको पोखर कहते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने एक बार राधा रानी को वरदान दिया कि तुम्हारे हाथ में से जो भी खाना बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो पाएगा वो रोग मुक्त होगा और विजयी होगा। तो ये खबर इतनी शुभ खबर थी कि सारे ब्रज में फैल गई, वो नंदगांव में भी गई, यशोदा को भी पता चली। तो यशोदा एक बार यहाँ पर आई और उन्होंने कीर्ति मैया से रिक्वेस्ट की कि तुम्हारी कन्या को मेरे बालक के लिए भोजन करने को भेजना, भोजन बनाने के लिए। तब से राधा रानी रोज जाने लगी, आना जाना चालू हो गया। तो एक दिन यशोदा मैया ने भाव विभोर होकर इस कन्या का सौंदर्य, कला, कुशल, शालीनता, कुलीनता, सद्गुण संपन्नता सब देखकर भाव विभोर हो गई यशोदा रानी और गले लगाया उसको प्रेम से, प्रेम के आश्रु बहाकर उसको भिगो दिया उसने। उसी भाव विभोर के स्थिति में उसके हाथों में हल्दी मल दिया, यानी वाग निश्चय कर दिया, एंगेजमेंट कर दिया। वो दोनों भाव विभोर थे, राधा रानी भाव विभोर थी, ये भी भाव विभोर थे। अरे संकोच में आ गई, बहुत शर्मा गई और राधा रानी की गोद में बहुत अच्छी तरह से आलिंगन दिया। फिर वहाँ से निकले, जब वहाँ से निकले तो यहाँ पहुँचे तो एक प्रकार से होश में आ गए। अरे बाप रे, माता पिता को बताए बिना कहीं जाकर कुछ घटना हो गई जो हमारे संस्कृति में नहीं है। आजकल हमारी ये संस्कृति हो गई है, खुद जाना, एंगेजमेंट क्या, शादी करके आना, सुबह कॉलेज गया था, शाम को एक लड़की को लेके आया और बोलता है मामा मॉम एंड पॉप शी इज माई वाइफ आई मैरिड हर टुडे। मम्मी माता जी को मोम बना दिया मोम और पिताजी को डैड बना दिया है ना। और कोई संस्कृति नहीं है, माता पिता भी कुछ बोलते नहीं, हाँ वेलकम वेलकम कम। फिर एक दिन जाएगा साथ में दोनों और अकेला लौट के आएगा, बोला मॉम डैड मैंने उसको छोड़ दिया है। सो सिंपल, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ये अपना संस्कृति हो गया है। लेकिन पुराने जमाने में माता पिता के सम्मति आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं होता था। ये लव मैरिज की पद्धति जो है हमारे संस्कृति में नहीं है, है लेकिन उसका भी एक रिवाज है, अपने वर्ण के साथ समगुण समवर्ण जिसका है उसके साथ में ही प्रेम होता है, वो ऐसी कहानी है हमारे पास, लेकिन इस प्रकार की कहानी नहीं है। तो उनको क्या लगा, अरे हमने तो संस्कृति को तोड़कर, माता पिता ने भेजा था भोजन बनाने के लिए और हम एंगेजमेंट करके आए, तो बड़ा संकोच हो गया। ऐसा ही समय था, संध्या का समय, अंधेरा भी नहीं है और दिन भी नहीं है। तो यहाँ पर उनको लगा अरे बाप रे क्या करेंगे, फिर समस्या, फिर मुकदमा ललिता के पास, ललिता क्या करें। तो कह रही बाप रे अच्छा एक मेरे पास उपाय है, ये कुंड जो प्रिया कुंड आपका कुंड है, पिताजी का कुंड है, स्वच्छ जल का कुंड है, इसमें हाथ धो लो, इस समय यहाँ पर कोई नहीं है, अंधेरा भी है, तुरंत धो लो, हम ही लोग हैं, तुरंत घर चले जाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो राधा रानी ने फिर हाथ धो लिया। यहाँ पर जब हाथ धो रही थी तो सखियाँ देख रही थी, अरे पूरा कुंड पीला हो रहा है, पूरा कुंड पीला हो रहा है, अरे सखी अरे राधा रानी भागो यहाँ से, दिख रहा है कि तुम्हारे हाथ से रंग जो निकल रहा है वो पूरे कुंड को पीला कर रहा है, तो सारा संदेह आपके ऊपर होगा, चलो जल्दी धुल गया आपका हाथ। और फिर सभी सखियों ने उनको खींचा और वो सब हंसते गिगलते हुए ऊपर चले गए घर पे अपने। और दूसरे दिन जब ही अपना सवेरे के काम करने के लिए सभी ब्रजवासी कुंड पे आए तो उन्होंने देखा सारा कुंड पीला हो गया है। वो मन ही मन में उन्होंने कहानी बना ली कि ऐसा हो गया होगा, और भाग के गए ऋषभानु महाराज और कीर्ति माता जी के पास उनको धन्यवाद देने के लिए, यानी धन्यवाद यानी बधाई देने के लिए, बधाई हो बहुत दिन से हमारे मन में जो बात थी वो आपने कर दी, बहुत बधाई हो। तो माता पिता को बड़ा आश्चर्य होता है और राधा रानी की ओर देखते हैं और नीचे सर कर दी। मौनम सर्वार्थ साधनम है ना, मूक सम्मति कहते हैं उसको, एक प्रकार से मान लिया हाँ सही बात है ये। तो क्रोध आने के बदले में उन्होंने उत्सव मनाया, क्यों कि उनको भी ये मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि कैसे प्रपोज करें, कन्हैया सबसे बड़ा अच्छा लड़का है इसके लिए, योग्य लड़का है, तो भी कैसे बात छेड़ें, कहाँ से शुरू करें। तो उन्होंने ये शुरू किया, हमारा काम आसान हो गया। बड़ी लंबी कहानी है। तो राधा रानी के हाथ यहाँ धोए हुए हैं इसलिए जो है पीली पोखर बन गया। बहुत सारे अर्थ हैं इसके अंदर। कृष्ण भगवान उसके बाद में यहाँ पर आए और देखा, रोज के रोज आते थे ना छुप छुप कर, तो स्वच्छ जल था पूरा, और दूसरे दिन आए तो देखा तो पूरा पीला हो गया है। तो वो पानी में कूदे ये पुकारते हुए, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। और पानी में कूदते हैं तो पूरा जो ये आसमंत है ना, पूरा ये गूंज रहा है वो आवाज़ से, वो प्रश्न से, पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है। फिर जब पानी से बाहर आते ना तो वो नीले कृष्ण जो है पूरे पीले होकर बाहर निकलते हैं, फिर भी पुकार रहे हैं ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे आते हैं और देखते हैं कि कृष्ण का कुछ गड़बड़ हो गया है। जब वैसे बाहर आता है तो सखाओं को वो पूछने लगता है कि कृष्ण कहाँ है, बताओ मेरा प्राण प्रिय कृष्ण कहाँ है, मेरा हृदयनाथ कृष्ण कहाँ है, मेरा प्राण कृष्ण कहाँ है। तो ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया तू ही तो कृष्ण है, नहीं बता मेरा श्याम सुंदर कहाँ है। अभी उनको बड़ी समस्या हो गई है, श्याम सुंदर स्वयं प्रश्न कर रहा है, मतलब श्याम सुंदर को पर कोई टोना हो गया है, कोई जादू हो गया है कि वो अपने आप को ही भूल गया है। फिर पता चलता है कि वो राधा रानी के भाव में है, रंग केवल नहीं बदला है, भाव भी बदल गया है, हृदय भी बदल गया है, पहचान बदल गई उसकी, और पूछ रहा है। तो ग्वाल बाल तो बार बार कह रहे अरे कन्हैया बावड़ा है होगा, अरे तू ही तो श्याम है, तू ही तो श्याम सुंदर है। तो ना श्याम सुंदर जी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको बालकों के साथ बालकों की तरफ से ये उत्तर अपेक्षित नहीं है। वो सोच रहे कि ये हमारे सुरुद हैं, वो बताएंगे श्याम सुंदर कहाँ हैं, उल्टा वो डांट रहे हैं अगर तुम ही श्याम सुंदर हो तो, उनको छोड़ देते हैं। फिर जाकर पेड़ों को, पौधों को, फलों को, फूलों को, जानवरों को, हिरणों को, मोरों को, तोतों को, सबको पूछने लगते हैं कि श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है। अभी ग्वाल बाल बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना जब लौट के आएंगे और इसी मूड में घर पहुंचेगा और पूछता रहेगा श्याम सुंदर कहाँ है, तो मैया प्रश्न करेगी, अरे क्या खिलाया तुमने, धतूरा खिलाया उसको, क्या भांग पिलाया उसको, क्या किया तुमने, तुम्हारे साथ छोड़ा था, अच्छा था तभी, अभी पागल बन के लौट गया है। तो उनको टेंशन था उसका कि क्या करें इसका। पुनः शाम तक इसी भाव में रहते हैं श्याम सुंदर जी, और शाम के समय पूरा दिन, हाँ पूरा दिन जाता है उसके अंदर। ग्वाल बाल पूरे परेशान है, अभी घर नहीं जाएंगे आज, क्योंकि घर जाएंगे कैसे, माता को मुंह कैसे दिखाएंगे, क्या हुआ श्याम सुंदर को, क्या किया आप लोगों ने, तो जवाब क्या देंगे, हमको पता ही चल रहा क्या हो रहा है। तो शाम को ना वो जो पीला रंग है ना, वो धीरे 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 करके उतरता है। जब तक वो पीला पानी उनके शरीर पर जाकर उनके वस्त्रों को, हाथों को, पैरों को गीला और पीला कर रखा है, तब तक वो उसी भाव में रहते हैं। जब टपक टपक कर, टपक टपक कर, फिर टपकना बंद हो जाता है, फिर गीला वस्त्र रहता है, फिर वो भी सूख जाता है, उसके बाद में ये होश में आते हैं। और जनरली कभी भी हम कभी किसी भाव विभोर तक जाते हैं ना, तो हम थक जाते हैं। पता नहीं आपको कैसे समझाऊँ कैसे, जब ऐसा भाव चढ़ता है कभी, उत्कट भाव किसी प्रकार का, जैसे पुत्र को फर्स्ट रैंक आया, तो उस भाव में माता पिता गले लगा कर बहुत रोते हैं, लेकिन उसके बाद में थक जाते हैं, क्योंकि उत्कट भाव का रोज का अनुभव नहीं है। तो कृष्ण भगवान जब भी वो कपड़े सूखते हैं तो थक जाते हैं और समझ जाते हैं। ग्वाल वालों को ग्वाल वाल पूछते कौन हो, तो मैं श्याम सुंदर हूँ। तो वो बोलते अच्छा हो गया, कैसे हुआ पता नहीं, पहले कैसे हुआ था पता नहीं, ठीक कैसे हुए पता नहीं, चुपचाप घर चलो, आज के दिन का रिपोर्ट माता पिता को नहीं देंगे कि आज क्या हुआ, क्योंकि क्या बताएंगे, तो आज दिन का रिपोर्टिंग माता पिता को नहीं हुआ नंद बैठक पे। तो गुरु महाराज बताते हैं कि ये जो पीला रंग है, जो प्रश्न पूछा था ना, पीली वस्तु क्या है, ये राधा रानी का प्रेम है जो उनके हाथों के हल्दी के माध्यम से जल में प्रवाहित हो गया। कृष्ण प्रेम, राधा रानी का प्रेम, तो कृष्ण उससे भाव विभोर हो गए, परास्त हो गए, अपना अस्तित्व खो गए, वो अपनी पहचान हो गए, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूँ यही भूल गए वो, और कुछ ही अलग बक रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ ये है कि राधा रानी का सर्वोच्च प्रेम जो है वो इस जल में है। और अभी मैं आखिरी बार एक रहस्य की बात बताता हूँ कि जब राधा रानी इसमें अपने हाथ धो रही थी, महेश भाऊ, जब राधा रानी अपने हाथ धो रही थी जल में, तो हाथ का जो रंग है वो धीरे धीरे पानी में फैल रहा है। आप विचार कर सकते हो, हाथ का रंग जो है धीरे धीरे पानी में मिल रहा है, दिख रहा है आपको, ऐसे जा रहा है आगे पानी में। और राधा रानी भी भाव विभोर होकर ऐसा हाथ मल रही है और ऊपर सा अंतर ध्यान होने के भाव में ऐसे विचार कर रही है कि सगाई तो कर दी मैया, मैया ने इसको विवाह में रूपांतर करें। देखो विचार क्या चल रहा है, द्वंद्व है मन में। ऑप्शन नंबर वन, विवाह किया जाए। ऑप्शन नंबर टू, विवाह नहीं किया जाए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, हाथ मल रहे हैं पानी में। विवाह करूंगी तो सारा जो चटपटा खेल है, छुप छुप के मिलना, कोयल बन के संकेत करना, कभी कोयल बन के ही मिलना कोकिला वन में, कभी मोर मोरनी बनकर मिलना, कभी श्री जी के मंदिर से पीछे की जगह है वहाँ खड़े होकर इशारे करना नंदगांव की ओर, कहाँ जाना है, कहाँ मिलना है, ये उत्सुकता, ये एंग्जाइटी, ये प्रकार का कुतूहल सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा। मैं बकायदा घूंघट ओढ़ के घर पे रहूँगी, दिन रात कभी भी मिल सकती हूँ, ये एक एडवांटेज है कि रोज जो तड़पने का काम है वो नहीं होगा और दिन रात श्याम सुंदर को मिल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं करूँगी विवाह तो ये जो आनंद है, परकीय रस कहते हैं उसको, वो आनंद बहुत अद्भुत है, वो मैं टाल नहीं सकती, लेकिन उसमें तय नहीं कर पा रही हूँ कि स्वकीय में प्रवेश करूँ, स्वकीय नहीं, बकायदा बीवी बनकर पत्नी बनकर पति के घर में प्रवेश करना और मिलना जुलना कोई अपराध नहीं है। अरे पति पत्नी मिलेंगे ही, वो इसको कहते हैं स्वकीय रस। और परकीय रस मतलब चुप चुप के मिलना, खत भेजना, पंचों के द्वारा भेजना या खुद लिख के हाथ से पहुँचा के आना, पेड़ में फूलों के बाजू में लगा के आना, इशारा करना, इसको परकीय रस कहते हैं। तो हाथ धो के धो रही है, हाथ स्वच्छ हो गए लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है, विवाह करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। उतने में फिर वो सखियां देखती है कि पूरा किंड पुंड पीला हो रहा है, फिर भगा लेके जाते हैं उसको। तो वो जो भाव है स्वकीय परकीय का, जो द्वंद्व है जिससे वो मल रही है, वो सब इस जल में है। लेकिन भाव विभोरता है, चाहे प्रश्न है लेकिन भाव विभोरता जरूर है। कृष्ण के प्रति अति उत्कट प्रेम का अनुभव है उसके अंदर, कृष्ण के ही विचार करते हुए चिंतन करते हुए वो हाथ धोए हुए उसके अंदर। कृष्ण का प्रेम किससे बढ़ेगा, विवाह करने से बढ़ेगा कि अविवाहित रहते हुए चुपके मिलने से बढ़ेगा? यही विचार है मेरे लिए, क्या अच्छा है मेरे, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं ऐसे ही रहूं और छुप छुप के मिलूं, या मुझे अच्छा लगता है कि मैं विवाह करके घर पे चले जाऊं उनके, फिर रोज का वो छुप छुप के मिलने का जरूरत नहीं है। मुझे क्या अच्छा लगता है उसका विचार ही नहीं है, क्या करने से कृष्ण का आनंद बढ़ेगा। और कृष्ण का आनंद यही इन हाथ धोने वाले क्रिया का मूल था, उसके आनंद का विचार, उसका प्रेम इस हाथ धोने के पीछे की क्रिया का मूल भाव था। तो साधारण जल नहीं है ये, अभी भी हाथ में देखे लिखिए आपको पीला दिखेगा, ये बोतल में डालेंगे तो बोतल भी पीली दिखेगी आपको, एकदम चुल्लू लेंगे तो बिना कलर का दिखेगा, बोतल भर के लोग तुरंत पीला हो जाएगा, दिखेगा आपको। तो ये और एक इसमें लीला है कि ये ठाकुर जी की डोंगी लीला का प्रिय स्थान है। डोंगी लीला का अर्थ है बोट पास टाइम्स। यहाँ पर भाद्रपद महीने में विशेष तिथि को विवाह ये नौका लीला होती है, उसको डोंगी लीला कहते हैं। तो ये डोंगी लीला का भी बड़ा प्रिय स्थान है। हमारे रमेश बाबा जी ने 300 साल से लीला बंद थी, क्योंकि इतना कीचड़ जमा हो गया था, कुछ कुछ धोते हैं कुछ करते हैं तो मैला हो गया था, तो इसलिए डोंगी लीला बंद हो गई थी। तो रमेश बाबा जी ने स्वयं कार सेवा करके अपने भक्तों को लेकर पूरी हाथ से खुदाई की, उसके बाद जेसीबी लगाया और बहुत गहराई तक खुदा, फिर स्वच्छ किया और नया जल डाला। फिर 4-5 साल के पहले नए सिरे से नौका विहार लीला शुरू हो गई। तो श्री जी का नौका विहार का भी बहुत प्रिय स्थली है ये, ऐसे अनंत लीलाओं का सागर है ये स्थान। और अभी मैंने आपको सारी लीलाएं संक्षेप में बताई है, तो पूरे विस्तार में बताएंगे मिनिमम 2.5 घंटा लगेंगे, एक के बाद बताते जाएंगे। सारी को मैंने संक्षेप में बता दिया, आपको आशा है कि आपको याद रहेगा, कम से कम नाम तो याद रहेगा कि इसमें क्या क्या हुआ था। रिवीजन करते हैं, रिवीजन। सबसे पहला बसंती ऋतु का वर्णन किया और कैसे बसंत ऋतु तत्पर रहता है भगवान की सेवा में। उसके बाद में होली का अर्थ बताया और उसके बाद में पांडे लीला का वर्णन किया, उसके बाद लट्ठमार होली का वर्णन किया, उसके बाद प्रियेश्वर महादेव का वर्णन किया, उसके बाद नारद मुनि के आगमन का वर्णन किया और उसके बाद में कैसे राधा रानी ने यहाँ पर हाथ धोए और ये कुंड पीला हो गया उसका वर्णन किया। और कुछ बताया? तीन शर्तें किसकी? नहीं शर्त नहीं, दंड दंड दंड। क्या दंड दिए तुमने? तीन, एक तो काला करेगा चेहरा, काला पोत देना है, और दूसरा दुपट्टा उत्तरीय वस्त्र खींच लेना है, और तीसरा डैश 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 लिखकर उनको भेज देना है। अरे बोल बोलो होली के रसिया की, अनंत लीलाएं होली की, अनंत लीलाएं। मैं तो खेलूंगी ना होली कभी सांवरे के संग, मैं तो खेलूंगी ना होली कभी सांवरे के संग, गोरो रंग झड़ गयो चढ़ आयो कारो रंग, मैं तो खेलूंगी ना होली। क्या कह रहे हो? मैं तो गोरी गोरी सी थी, इसके साथ होली की खेली मैं, तो काला रंग चढ़ाया है मुझे ऊपर। ठाड़ो नंद कुमार, याही पे क्यों न डालो रंग। यकी अकेला खड़ा है पेड़ के पास, क्यों न सब उसको घेर कर रंग से धो दें, क्यों रंग नहीं डाला जाए इसके ऊपर। बहुत सारे सुंदर सुंदर गाने। अरे महीना फागुन को, अरे क्या शर्माना इस महीने में, क्या लज्जा करनी है, क्या संकोच करना है। अरे महीना फागुन को एक बात बताना, मैं जरूर बताऊंगा आपको दोबारा। वो ये है कि हमारे ठाकुर जी जब ही निकलते हैं नंदगांव से, वो लंबी लंबी कहानी क्या क्या बताऊं, तो जब निकलते हैं बड़ा सज धज के पूरा पैक करके निकलते हैं। हाँ ये गुलाल यहाँ, अबीर यहाँ पर, हाँ अरे मेरे मुख पे अबीर, मुख पे अबीर, काना ने कैसी मारी, ए मारी हमारी हमारी रे, मेरे मुख पे अबीर, मुख पे अबीर, काना ने कैसी मारी। इसका पूरा स्टॉक लेके निकल रहे हैं, और साथ साथ में पेटी मतलब पेटारा क्या कहते हैं, संदूक भर भर के गिफ्ट लेके जा रहे हैं, जो होली में हारने के बाद हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष को देते जाता है। जब ही हम कोई गेम खेलने जाते हैं तो हम जीतने के लिए जाते हैं कि हम कप लेके आएंगे, और हमारे कन्हैया जी हारने के बाद क्या देना है वो भर भर के लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर हारते हैं, जानबूझकर हारते हैं, और वो तैयारी करके जो लाया है ना वो सबको दे देते हैं गोपियों को, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं। आचार्य बताते हैं, यहाँ के आचार्य हमारे गुरुदेव बताते हैं कि होली का जो खेल है वो हारने के लिए होता है। भगवान अपने भक्तों के सामने हारना चाहते हैं और भक्तों का गौरव करना चाहते हैं, इसलिए सक्षम होने पर भी, हावी होने की शक्ति होने पर भी बार बार राधा रानी के सामने होली में हार जाते हैं, और जो देते हैं ना उसको कहते हैं फगुआ। क्या बोलते हैं? फगुआ उस वस्तु का नाम है जो आपने हारने के बाद दिया है, चाहे मिठाई हो, धन हो, अलंकार हो, वस्त्र हो, चरण छूते। और वो फगुआ जो गोपियों को मिलता है वो गोपियाँ भी लोगों को बांटती हैं, तो हमें भी कई बार फगुआ मिला है, कभी अंगूठी मिली है, कभी कुछ मिला है, कभी अलंकार मिला है। देखो ये माला जो है ना, आपको बहुत प्रश्न उठते होंगे क्या क्या पहनते हैं प्रभु जी, तो ये सारी प्रसादी है जो भी मैं पहन रहा हूँ। ये जो अभी मैं पहना हुआ हूँ ये यज्ञ में मुझे नंदगांव के गोस्वामी ने पहनाया था इस बार, अभी आज बसंती है इसलिए मैंने संभाल कर रखा था उसको। ये पिछले साल का फगुआ है जो मुझे रस मंदिर में दिया गया, ये तो जानते हैं आप नरसिंह पवित्र है, और ये जो है वो नंदगांव के बरसाने के एक सन्यासी ने अपने हाथ से प्रेम से बना दिया है। इसके अंदर राधा कृपा कटाक्ष, ब्रज रज, तुलसी दल, जगन्नाथ अष्टकम, बहुत सारे अष्टकम यहाँ पर लिखे रखे हुए हैं, उसको पैक कर दिया है। और आपको मैं एक बहुत मज़ेदार वस्तु दिखाता हूँ जिसका होली के साथ कनेक्शन है। वो ये है कि हम लोग बहुत पहले ना कैंप लगाया करते थे, अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन बहुत पहले हम लोग स्वयं ड्राइविंग करके दवाई लेके सब जगह भागते थे, फिर ट्रेन में, कभी बस में, कभी एसटी में, कभी किस में, पालघर में। तो एक बार ट्रेन में मेरी बीड बैग गुम हो गई, तो बीड बैग गुम होना बहुत बड़ी बात है, गुरु महाराज के सामने संकोच गाना पड़ता, महाराज जी सॉरी। तो महाराज जी को बताया ऐसे ऐसे कैंप में जा रहा था, बहुत सारा सामान था, तो वो बीड बैग वो चट के ट्रेन में रह गई। तो ट्रेन में ट्रेन बीड बैग गुम हो गई, दीक्षा वाली बीड्स गुम हो गई, तो बड़ा संकोच था। तो हमने रमेश चंद्र गोस्वामी को ही बात बताई, महाराज जी हमारा बीड बैग गुम हो गई। तो रमेश चंद्र गोस्वामी नंदगांव के जो गोस्वामी हैं, उन्होंने ये जो माला है जो किसी सन्यासी ने गोवर्धन में रहते हुए अपने घर की तुलसियों का ये माला बनाकर ये थोड़ी बनाकर रखी थी, ये माला जो मणि बनाकर अपने घर की तुलसियों को जाने के बाद में सुखाकर उसको घिसा कर मणि इकट्ठा कर करके अपने हाथ से ये माला बनाई हुई है एक सन्यासी ने, और वो रमेश जी गोस्वामी को भेंट में दी थी, उन्होंने हमको ये भेंट में दी, रमने महाराज को दी। वो महाराज रंगीली होली के दिन इस समय उसी समय यहाँ पर थे, उस दिन महाराज यहाँ पर थे, और पहचान में नहीं आ रहे थे, इतने रंग से रंगे हुए थे, इतने रंग में रंगे हुए थे, कितने विविध प्रकार के रंग थे। और वो मान मंदिर के नीचे खड़े होकर ऐसे जप कर रहे थे इसके ऊपर, और वही पूरा माला किया और मेरे को दे दिया, ये लो। तो ये विशेष होली की प्रसादी है, ऐसा है। उसके बाद में गुम नहीं हुई, प्रार्थना करना कि बची रहे, बढ़िया माला। इतना मतलब इतना दिव्य प्रेम और इसके अंदर शक्ति है गुरु महाराज के प्रेम की, गोस्वामी के प्रेम की, गोस्वामी के ऊपर जो उनको प्रेम था, और बनाने वाले भी बहुत शुद्ध सन्यासी विरक्त भक्त थे। ऐसा पूरा सिक्वेंस है इसके पीछे। तो ये कोई मतलब स्वयं को चमकाने के लिए नहीं पहने हैं, ये पूरी कृपा और आशीर्वाद है। ये प्रार्थना करते करते पहनता हूँ ताकि अच्छी कथा बोल सकूँ। और ऐसे नहीं है, इधर तीन है घर में, बहुत पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बॉक्स भरे हुए हैं। और हर बार जब आता हूँ तो मिलते रहते हैं। यज्ञ किया तो तीन वस्त्र मिले, दो मैंने किसी को दे दिए, किसी को बालक हुआ उसको भेज दिए, ऐसे देते भी रहता हूँ, लेकिन ये नहीं दूंगा किसी को। जय जय श्री राधे श्याम, थैंक यू वेरी मच, जय हो श्री राधे श्याम।